ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने राज्य के सभी तहों और निकायों से छुआछूत और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने का किया आग्रह। संघीय संसद के दोनों सदनों में अगले आर्थिक वर्ष के बजट पर सैद्धांतिक विचार विमर्श जारी। 16वीं योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बजट बनाया गया है। सत्तापक्ष के सांसदों का कथन, बजट में राष्ट्रीय महत्व के मामलों को शामिल नहीं किया गया है, विपक्ष का आरोप। ललितपुर के गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेंद्र महर्जन समेत 14 लोगों के खिलाफ 1,04,00,00,000 रूपये से अधिक भ्रष्टाचार करने के आरोप में अख्तियार द्वारा मुकदमा दर्ज। और क्लोडिया सेनवाम चुनी गई मैक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि दलित समुदाय के संवैधानिक और कानूनी अधिकार संरक्षण और संवर्धन करने के लिए आगामी आर्थिक वर्ष के नीति कार्यक्रम और बजट में दलित विकास प्राधिकरण के संस्थागत विकास की व्यवस्था की गई है। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में आज काठमांडू में आयोजित छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा अवसर क्रियान्वयन और चुनौती विषयक अंतर्क्रिया में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि दलित समुदाय का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सरकार प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में आर्थिक वर्ष 2081-82 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान बजट के ऊपर सामान्य विचार विमर्श जारी रहा। बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेपाली कांग्रेस के सांसद धनराज गुरुंग ने कहा कि कर का बोझ बढ़ाए बिना कर का दायरा बढ़ाकर राजस्व बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अवैध लेनदेन को बंद किया जा सके तो राजस्व में उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी की जा सकती है। औषधीय उत्पादन के रूप में गांजा की खेती की जा सकती है और जड़ी बूटियों के उत्पादन पर जोर दिया जा सकता है। अशोक कुमार चौधरी इसी तरह नेकपा एमाले के सांसद रघुजी पंत ने कहा कि बजट में बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और कृषि, महिला शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बजट कम नहीं किया जाना चाहिए। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद महेंद्र राय यादव ने कहा कि नेपाली जनता की तीव्र विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आया ये बजट उचित, संतुलित और व्यावहारिक है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बजट को वित्तीय अनुशासन के दायरे में रखकर क्रियान्वयन में करने का आग्रह किया। सांसदों ने कहा कि बजट में राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार को विशेष प्राथमिकता दी गई है और बजट इस तरह लाया गया है कि 16वीं योजना के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि आंतरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ़ाकर आंतरिक राजस्व स्थिति को मजबूत करने के लिए बजट लागू किया जाना चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा कि बजट में सीमा शुल्क और आयात के आधार पर राजस्व वृद्धि की प्रवृत्ति को तोड़ने की कोशिश की गई है। विपक्षी दल के सांसदों ने कहा कि बजट को लेकर असमंजस की स्थिति है। कुछ मंत्रालयों में बहुत ज्यादा बजट आवंटन है और कुछ मंत्रालयों में बहुत कम बजट आवंटन है। बजट में महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सभा की बैठक में आर्थिक वर्ष 2081-82 के बजट के ऊपर सामान्य विचार विमर्श आज भी जारी रहा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने ललितपुर की गोदावरी नगरपालिका के तत्कालीन नगर प्रमुख गजेंद्र महर्जन सहित 14 लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। सरकार को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नगर प्रमुख महर्जन सहित 14 लोगों के विरुद्ध 1,04,87,45,000 रूपये क्लम्ड अमाउंट मांग दावी करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जानकारी अख्तियार ने दी। गंडकी प्रदेश के पोखरा में आज से श्रमदान रोजगार मेला शुरू हुआ है। मेले का उद्घाटन श्रम रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद अर्याल और गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे ने संयुक्त रूप से की। मेले में विभिन्न 39 स्टॉल रखे गए हैं। कल तक चलने वाले मेले में श्रमाधान के बहुआयामिक पक्ष पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री हरिप्रसाद उप्रेती ने रक्षा मंत्रालय अंतर्गत के निकायों द्वारा संचालित विकास निर्माण परियोजनाओं में लक्ष्यानुसार की प्रगति प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करने का निर्देश किया। आज रक्षा मंत्रालय में बुलाई गई बैठक में मंत्री उप्रेती ने ऐसा निर्देश किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र की उपलब्धियां बहुआयामिक है। गणतंत्र दिवस 2081 के अवसर पर आज राष्ट्रीय समाचार समिति में आयोजित फोटो प्रदर्शनी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉ यादव ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रणाली दुनिया की शासन प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ है। गणतंत्र के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास में तेजी आने का जिक्र करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉ यादव ने कहा कि भौतिक विकास के साथ साथ नवीनतम तकनीक का विकास देश और दुनिया को जोड़ रहा है। रेडियो नेपाल और बिलायती प्रसारण संस्था बीबीसी के बीच रेडियो नेपाल एफएम काठमांडू से बीबीसी कार्यक्रम प्रसारण संबंधी समझौता हुआ है। रेडियो नेपाल में आज हुए समझौते में रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर केसी और बीबीसी के व्यापार विकास निदेशक सिमोन केंडा ने हस्ताक्षर किए। गुलमी में आज हुई जीप दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य 7 लोग घायल हो गए। जीप दुर्घटना में सत्यवती गांव पालिका वार्ड नंबर 8 भार से केवल 30 वर्षीय कमला बुढ़ा तुकी की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी शंकर पोखरेल ने दी। पुलिस के मुताबिक जीप अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 400 मीटर नीचे खाई में जा गिरी थी। हादसे में घायल हुए लोगों में से 4 की हालत नाजुक बताई गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मेक्सिको में क्लॉडिया शीनबॉम पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। क्लॉडिया को चुनावों में बड़ी जीत मिली है। मेक्सिको के चुनाव आयोग ने कहा है कि नतीजे बताते हैं कि 61 साल की क्लॉडिया 58 से 60% वोट हासिल करके जीत रही हैं। मेक्सिको में रविवार को चुनाव हुए थे। क्लॉडिया के सामने इन चुनावों में एक महिला उम्मीदवार सोर्चिल गाल्वे से थी। क्लॉडिया सोर्चिल से 30% ज्यादा फीसदी पॉइंटिंग हासिल करके आगे रही है। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। देश के आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। कोलंबो के बाहर सीतावाव का में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई है जब उनका घर बाढ़ की चपेट में आ गया। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है। 9 जिलों में भूस्खलन से जुड़ी चेतावनी जारी की गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने राज्य के सभी तहों और निकायों से छुआछूत और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने का किया आग्रह। संघीय संसद के दोनों सदनों में अगले आर्थिक वर्ष के बजट पर सैद्धांतिक विचार विमर्श जारी। 16वीं योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बजट बनाया गया है। सत्ता पक्ष के सांसदों का कथन, बजट में राष्ट्रीय महत्व के मामलों को शामिल नहीं किया गया है, विपक्ष का आरोप। ललितपुर के गोदावरी नगरपालिका के प्रमुख गजेंद्र महर्जन समेत 14 लोगों के खिलाफ 1.4 करोड़ रूपये से अधिक भ्रष्टाचार करने के आरोप में अख्तियार द्वारा मुकदमा दर्ज। और क्लॉडिया सेनवान चुनी गई मैक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।